ये अन्योन्य आश्रय दोष की बात चल रही थी, तो थोड़ा पीछे वाली लाइन को देखना है कि लक्षण क्या बना था। क्रियावाचकत्व सति घन पठितत्व धातुत्व, इसमें क्रियावाचकत्व शब्द जो है, इसमें जो क्रिया शब्द है उस क्रिया के बारे में मीमांसकों ने कहा था कि क्रिया च धात्वर्थ एव, माने क्रियावाचकत्व में क्रिया का अर्थ जो है वह है धात्वर्थ, धात्वर्थ फल। ठीक, तो चलिए फल को अभी थोड़ी देर के लिए रख लीजिए जेब में, क्योंकि हमें जो बात समझानी है उसको समझना है। तो क्रियावाचकत्व में जो क्रिया शब्द है उसका अर्थ मीमांसकों ने क्या किया था, धात्वर्थ किया था, और दोनों पर्यायवाची हो गए, इसका मतलब क्रिया और धात्वर्थ। तो क्रिया के को हटा करके अगर हम धात्वर्थ जोड़ देंगे तो क्या होगा, धात्वर्थ वाचकत्व सति, ऐसा होगा। तो क्रिया वाचकत्व सति घन पठितत्व धातुत्व, ये व्याकरणों के हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि व्याकरणों के यहाँ क्रिया का मतलब व्यापार होता है। तो क्रिया वाचकत्व सति माने व्यापार वाचकत्व सति घन पठितत्व धातुत्व, तो इसमें अन्योन्याश्रय दोष नहीं है। लेकिन मीमांसक जो क्रिया का अर्थ धात्वर्थ करते हैं तो क्या होगा, धात्वर्थ वाचकत्व सति घन पठितत्व धातुत्व, ऐसा लक्षण उनके यहाँ बन जाएगा। और ऐसा लक्षण अगर बन जाएगा तो क्या होगा कि ये लक्षण क्यों बनाते हैं, लक्ष्य का ज्ञान करने के लिए ना, यहाँ पर लक्ष्य क्या है, धातु। ठीक, तो धातु के ज्ञान करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर धात्वर्थ जो क्रिया है उसका ज्ञान करने ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, और धात्वर्थ क्रिया क्या होती है इसके ज्ञान करने के लिए धातुत्व के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से उनके मत में अन्योन्याश्रय दोष होता है। आपको मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि अन्योन्याश्रय दोष जो है ना तीन स्थिति में होता है, उत्पत्ति के विषय में, ज्ञान के विषय में, और स्थिति के विषय में। इसी को कहते हैं उत्पत्तो व्यप्तो स्थितो च अन्योन्याश्रयः, माने उत्पत्ति में, व्यप्ति माने ज्ञान में, और स्थिति माने स्थिति तो आप समझते ही हैं, माने रहना होना, इस इन तीनों परिस्थिति में जो है अन्योन्याश्रय दोष लगता है। अब ये कारिका जो दीक्षित जी की है उसमें इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, उसमें सीधे कहा कि धात्वर्थत्व क्रियात्व चेत धातुत्व च क्रियार्थता, माने धात्वर्थत्व की बात की, क्रियात्व की बात की, धातुत्व की बात की, और क्रियार्थता की बात की, इन चारों की बात की। इसमें न कहीं उत्पत्ति शब्द आया, न कहीं ज्ञान शब्द आया, न स्थिति शब्द आया, तो फिर अन्योन्याश्रय दोष होगा कैसे, क्योंकि होता तो इन्हीं तीनों में अन्योन्याश्रय दोष है। तो इसी बात को क्लियर करने के लिए इसकी व्याख्या की जरूरत पड़ी। व्याख्याकार कहते हैं सब में ग्रह लगा दीजिए, जैसे जहाँ पर धातुत्व है उसमें धातुत्व ग्रह कर दीजिए, जहाँ पर क्रियात्व है उसमें क्रियात्व ग्रह कर लीजिए। मैंने कभी बताया होगा आपको कि शास्त्र में ग्रह धातु का अगर प्रयोग हो ना तो उसका अर्थ ग्रहण नहीं होता है, उसका अर्थ ज्ञान होता है। तो धातुत्व ग्रह अगर कहते हैं इसका मतलब हो गया धातुत्व ज्ञान, क्रियात्व ग्रह अगर कहते हैं उसका मतलब हो गया क्रियात्व ज्ञान। ठीक है, अब ये ग्रह शब्द जब उसमें लगा देंगे फिर अन्योन्याश्रय दोष होने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्ञान में, स्थिति में, और उत्पत्ति में जो है अन्योन्याश्रय दोष लगता है। अब व्याख्या पर हम ध्यान देते हैं कि यदि क्रियात्व धात्वर्थत्व एव, मीमांसकों को कहा जा रहा है, व्याकरण कहते हैं कि अगर आप क्रियात्व और धात्वर्थत्व दोनों को समान मान लेंगे तो क्या होगा कि धातु तद ही धातुत्व ग्रहे, माने धातुत्व के ज्ञान में तदर्थत्व रूप क्रियात्व ग्रह, फिर धातु का जो अर्थ है क्रिया उस क्रियात्व ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, और क्रियात्व ग्रहे क्रियात्व के ज्ञान में च तदवच्छिन्न वाचकत्व घटित धातुत्व ग्रह, और क्रियात्व ज्ञान में जो है आपको धातुत्व ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। माने धातुत्व ज्ञान में क्रियात्व ज्ञान की आवश्यकता, और क्रियात्व ज्ञान में धातुत्व ज्ञान की आवश्यकता होगी, यही अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। इति ग्रह पदम पूरयित्वा व्याख्येयम्, इसमें जो है ना धातुत्व और क्रियात्व में ग्रह पद जोड़ करके पूरयित्वा फिर व्याख्या करनी चाहिए, तभी अन्योन्याश्रय दोष लगेगा। तो पहले हम ये समझ लें कि अन्योन्याश्रय दोष लगा कैसे, कि धातुत्व ज्ञान में क्रियात्व ज्ञान अपेक्षित हो गया और क्रियात्व ज्ञान में धातुत्व ज्ञान अपेक्षित हो गया, और एक दूसरे का ज्ञान अगर परस्पर अपेक्षित हो गया तो वही अन्योन्याश्रय कहलाता है, अन्योन्याश्रय दोष हो गया। यहाँ पर हमने जानबूझ करके एक शब्द को छोड़ दिया था बोलना, ये जो था ना क्रियात्व ग्रहे च तदवच्छिन्न वाचकत्व घटित धातुत्व ग्रह, इसमें हमने केवल धातुत्व ग्रह लेकर के आपको समझाया, समझने के लिए सही है कि कोई पूछे कि कैसे अन्योन्याश्रय होगा तो क्रियात्व ज्ञानाय धातुत्व ज्ञानम आवश्यकम, आ धातुत्व ज्ञानाय क्रियात्व ज्ञानम आवश्यकम, तस्मात अन्योन्याश्रय। ये ठीक है, ये कहने के लिए समझने के लिए ठीक है। अब ये धातुत्व ज्ञान जो है इसका विशेषण है तदवच्छिन्न वाचकत्व घटित धातुत्व ग्रह, तदवच्छिन्न में तत्पद से पकड़ लीजिए क्रियात्व को, ठीक, तो तद हो गया क्रियात्व, उससे अवच्छिन्न, तो क्रियात्व से अवच्छिन्न कौन होगा, जैसे घटत्व से अवच्छिन्न कौन होगा, घट होगा, तो क्रियात्व से अवच्छिन्न कौन होगा, क्रिया होगी, तो तदवच्छिन्न तत् से हो गया किसको लिया आपने, क्रियात्व को, उससे अवच्छिन्न कौन हो गई, क्रिया, उसका वाचक, उसका वाचक कौन होगा, धातु ही होगा ना, वाचकत्व किस में रहेगा, वाचक में रहेगा, तो उस वाचकत्व से घटित जो धातु है, माने धातु का अर्थ करते हैं ना क्रियावाचक धातु, तो क्रियावाचक धातु, ये बताने के लिए इन्होंने ये शब्द इसमें विशेषण लगाया तदवच्छिन्न वाचकत्व घटित धातुत्व ग्रह, कि धातुत्व ज्ञान जो है इस धातुत्व ज्ञान में जो धातुत्व है वो कैसा है, तो तदवच्छिन्न वाचकत्व से घटित है, घटित माने युक्त है, तो क्रियात्वावच्छिन्न क्रियावाचकत्व घटित धातुत्व, धातुत्व ज्ञान जो है आवश्यक है क्रियात्व ज्ञान के लिए, यही कहना चाहते हैं। फिर से मैं एक बार इसको बोलता हूँ, तदवच्छिन्न वाचकत्व घटित धातुत्व ग्रह, इसको हम कहेंगे कि क्रियात्वावच्छिन्न क्रियावाचकत्व घटित धातुत्व ग्रह आवश्यक, ठीक है। इस तरह से इन्होंने अन्योन्याश्रय दोष कैसे हुआ उसको बताया। अब आगे कहते हैं कि यथा पूरीत्वा व्याख्येय, माने ग्रह पद लगा करके, क्योंकि कारिका में केवल धातुत्व क्रियात्व की बात हुई थी ना, ग्रह नहीं लगाया था, ज्ञान की बात नहीं हुई थी, तो कहा कि ज्ञान लगा लीजिए तब व्याख्या करिए। यथा श्रुते च, माने जिस तरह से श्रुत है कारिका में जो बात सुनाई देती है उसमें अन्योन्याश्रयस्य उत्पत्तो व्यप्तो वा, अन्योन्याश्रय दोष जो है वह प्रतिबंधक होता है लक्षण में, कहाँ कहाँ पर, उत्पत्तो उत्पत्ति विषय में, व्यप्तो और व्यप्ति के विषय में, व्यप्ति माने ज्ञान के विषय में, एक इन्होंने छोड़ दिया है स्थितो भी होता है, तो उत्पत्तो व्यप्तो जो है यही उपलक्षण है स्थितो का भी, तो अन्योन्याश्रय दोष जो है वह उत्पत्ति में, व्यप्ति में और स्थिति में प्रतिबंधकत्व अभ्युपगम है ना, वह प्रतिबंधक माना जाता है, अभ्युपगम माने माना जाना, स्वीकार करना, तो अन्योन्याश्रय दोष को उत्पत्ति में प्रतिबंधक माना जाता है, व्यप्ति में प्रतिबंधक माना जाता है और स्थिति में प्रतिबंधक माना जाता है, और असंगति आपत्ति, अगर हम इसमें ग्रह नहीं जोड़ेंगे तो फिर असंगति होने लगेगी, अन्योन्याश्रय की जो बात आ रही है वो बात फिट नहीं बैठेगी। इस तरह से अन्योन्याश्रय दोष होगा, मीमांसक अगर जो व्याख्या कर रहे थे कि क्रिया जो है वह धात्वर्थ ही है और धात्वर्थ जो है वह क्रिया ही है, इस तरह से अगर ये व्याख्या करेंगे तो अन्योन्याश्रय दोष होगा। आगे इससे निबटने, इससे बचने के लिए मीमांसक लोग एक उपाय सोचते हैं, उपाय क्या सोचते हैं, कहा कि ऐसा है धातु का लक्षण अगर करना है तो क्या करेंगे ना, 2200 के लगभग धातु है, 2200 धातु को जो है ना उच्चारण कर देंगे और फिर कहेंगे अन्यतमत्वम धातुत्वम, माने इन 2200 में जो अन्यतम है, माने एक एक करके जो है वो सब धातु है, अन्यतम होता है अनेकों में से जो एक है उसको कहते हैं हम धातु, तो अन्यतमत्वम धातुत्वम, इस तरह से जो है धातु का हम लक्षण बना लेंगे तो कहीं अव्याप्ति अतिव्याप्ति नहीं होगी, कहीं अन्योन्याश्रय दोष भी नहीं लगेगा और धातु का लक्षण भी तैयार हो जाएगा, ऐसा मीमांसकों ने कहा कि अन्यतमत्वम धातुत्वम, अन्यतमत्वम धातुत्वम मतलब सारी धातुओं का पाठ करके फिर लास्ट में कहेंगे एसु अन्यतमत्वम धातुत्वम, ताकि अगर ऐसा आप लक्षण करेंगे तो फिर क्या होगा ना, फिर भूआदेह इत्यस्य व्यर्थापत्ति है, फिर पाणिनि ने जो धातु संज्ञा के लिए भूआदि धातव सूत्र बनाया वह तो व्यर्थ होने लगेगा। तो पाणिनि का सूत्र व्यर्थ हो जाए ऐसा लक्षण बनाना जो है ना कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए ये लक्षण भी आपका ठीक नहीं है। इति अभिप्रेत्य आह अस्तु इति, ऐसा ही अभिप्राय मन में रख करके अस्तु कहा। अस्तु कहाँ पर कहा, तो कारिका में है ना, अन्योन्य संशय स्पष्ट तस्मात अस्तु तथाकरम। अस्तु तथाकरम ये जो कहा ना, तथाकरम के बदले यथाकरम पाठ होना अच्छा है, माने जैसे आकर ग्रंथों में कहा गया है वैसा ही अस्तु, वैसा ही जो है ना लक्षण मानना चाहिए। यहाँ पर किस लक्षण की बात हो रही है, पेच कहाँ फंस रही है, तो क्रिया पर पेच फंस रही है। ये मीमांसा ये कि क्रिया किसे कहते हैं, तो मीमांसकों ने क्रिया को जो है ना कह दिया था कि धात्वर्थ को क्रिया कहते हैं, वहीं पर मामला जो है ना उलझ गया। अगर हम क्रिया का लक्षण जो है ना आकर ग्रंथ के अनुसार करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आकर ग्रंथ में क्रिया का लक्षण क्या कहा, वहां पर धात्वर्थ क्रिया ऐसा नहीं कहा, वहां पर क्या कहा तो आगे लिखते हैं व्यापार संतान क्रिया, कि व्यापार का जो संतान है उसी संतान का नाम है क्रिया। अब कहेंगे कि संतान क्या है, संतान माने विस्तार, तो व्यापार का जो विस्तार है उसका नाम है क्रिया। तद वाचकत्व सति घनपठ तत्व, उस व्यापार संतान का वाचक हो और घन में पठित हो उसको हम धातु कहेंगे। इस तरह से व्याख्या कर देने पर जो है अन्योन्याश्रय दोष नहीं लगेगा, क्योंकि अन्योन्याश्रय दोष लगता था कब, जब हम क्रिया को धात्वर्थ मान लेते थे, तो क्रियात्व ज्ञान के लिए धात्वर्थ ज्ञान आवश्यकता आवश्यक होता था, धात्वर्थ ज्ञान के लिए क्रियात्व ज्ञान आवश्यक होता था, तो अन्योन्याश्रय दोष लगता था। अब जो है ना बदल गया, क्रिया हमने किसको मान लिया, मान लिया व्यापार संतान मान लिया, तो व्यापार संतान के ज्ञान के लिए ना धातुत्व ज्ञान की जरूरत नहीं है, इस तरह से अन्योन्याश्रय दोष नहीं होगा। तो व्यापार संतान क्रिया ये व्याख्या सही है, धात्वर्थ क्रिया ये व्याख्या जो है वह गलत है। तो व्यापार संतान क्रिया तदवाचकत्व सति गणपतित्व इत्यर्थ, ऐसा जो है उस लक्षण का अर्थ निकलेगा। अब फिर प्रश्न उठाया जा रहा है कि ननु सत्तादीन फलांशान अन्यतमत्वेन आदाय तदवाचकत्व सति गणपतित्व लक्षणम उचितम। ये बात मैं शुरू में भी बता रहा था कि वो कहते ये हैं कि क्रिया का अर्थ हम फल कर लेंगे तो क्रियावाचकत्व सति का अर्थ हो जाएगा फलवाचकत्व सति गणपतित्व धातुत्व, वो बात अब यहाँ पर ये बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सत्तादीन फलांशान, जैसे भू धातु का अर्थ है सत्ता, एद धातु का अर्थ है वृद्धि, इस तरह से सत्ता आदि जो फल का अंश है उसको फलांश, सारे फलांशों को एक जगह इकट्ठा करके उसमें अन्यतमत्वेन आदाय, उनमें से किसी उनमें से अन्यतम को आदाय माने ग्रहण करके फिर कहेंगे कि तदवाचकत्व सति माने फलवाचकत्व सति गणपतित्व लक्षणम उचितम। इस तरह से लक्षण बनाइए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस फल के ज्ञान के लिए धातुत्व का ज्ञान आवश्यक नहीं होगा, तो अन्योन्याश्रय दोष नहीं लगेगा। उस पर कहते हैं कि धात्वर्थत्वात् तेषां क्रिया शब्देन व्यवहारो भाष्यादो कृतः अपि उपपत्स्यत इति। फिर मीमांसक अपने ही तर्क को समर्थित करने के लिए कहते हैं कि धात्वर्थत्वेन तेषां क्रिया शब्देन व्यवहारो, कहा कि भाष्यकार ने भी जो है फल शब्द के लिए धात्वर्थ शब्द का व्यवहार किया है, क्रिया शब्द का व्यवहार किया है, तो वह जो भाष्यकार का व्यवहार है, भाष्यकार ये मैं कोई नई बात मीमांसक होकर के नहीं बता रहा हूँ, भाष्य में भी जो है फल को धात्वर्थ बताया गया, फल को क्रिया शब्द से व्यवहार किया गया, वह व्यवहार भी उपपत्स्यते माने उसकी भी उपपत्ति होगी, वह व्यवहार भी उस व्यवहार की भी सिद्धि होगी। इति चेन न, कहा कि इस तरह से आप तर्क नहीं दे सकते, क्योंकि अन्यतम मध्य विकल्पस्यापि विकल्पयति इति प्रयोगानुसारात् प्रवेश आवश्यकत्वेन तदर्थ के बा इति अव्यये उक्तरीत्या गणपत तत्व सत्वेन अतिव्याप्ते है। कहा कि अगर ऐसा आप लक्षण बना लेते हैं कि फलों को इकट्ठा करके फिर कहेंगे कि अन्यतम वाचकत्वे सति गणपत तत्व, तो फिर क्या होगा कि उस अन्यतम के बीच में ना विकल्प भी आएगा, विकल्प आएगा, माने वही बा गति गंधन यो धातु वो भी आएगी अन्यतम में, और फिर बा की धातु संज्ञा होकर के विकल्पयति इस तरह से प्रयोग, विकल्प जो है फल, विकल्प रूपी जो फल इसकी भी गणना करेंगे आप उसमें, और फिर कहेंगे अन्यतम वाचकत्वे सति, तो वह उस विकल्प शब्द को भी धातु संज्ञा होने लगेगी, फिर विकल्पयति इति प्रयोगानुसारात, फिर विकल्प इस प्रयोग के अनुसार प्रवेश आवश्यकत्व न बा धातु का जो है ना उसमें प्रवेश हो जाएगा, तदर्थ के बा इति अव्यये उक्त रीत्या, फिर बा में जो है अव्या जो अव्यय है उसमें उक्त रीत से गण पठ तत्व सत्य न, गण में चूंकि पाठ है धातु पाठ में, तो फिर अतिव्याप्ते है बा में भी जो है क्या होगा धातु संज्ञा की अतिव्याप्ति होने लगेगी। तात्पर्य ये है कि बा का अर्थ जो विकल्प है वह विकल्प भी फल के रूप में तो है ही, तो अगर आप फल की गणना करके फिर कहेंगे अन्यतम वाचकत्व सति गणपति तत्वम, तो इस फल विकल्प रूप फल के आधार पर और गण पाठ के आधार पर बा शब्द जो है इसकी भी धातु संज्ञा होने लगेगी, उसमें धातुत्व का लक्षण चला जाएगा, लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो व्याख्या है कि फलवाचकत्व सति गणपति तत्वम धातुत्वम, अथवा सारे फलों को कह करके अन्यतम वाचकत्व सति गणपति तत्वम, ये लक्षण सही नहीं है। इस तरह से ग्यारहवीं कारिका के द्वारा ये जो धातु का लक्षण जो का जो प्रसंग था कि क्या होना चाहिए, उस प्रसंग का जो है कि संपन्नता यहाँ पर होती है। अब बारहवीं कारिका से जो है कोई और अन्य प्रसंग आएगा जिसकी व्याख्या हम अगले पाठ में करेंगे।